नमस्कार, आदा, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल हम चर्चा कर रहे थे कि परम सत्ता से अपना संबंध कैसे जोड़ें। मुझे लगता है भारतवर्ष में ये तलाश, ये खोज बहुत ज्यादा रही है कि परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे उनसे मिला जा सकता है, संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। और शायद इसी तलाश में अलग अलग जगहों पे लोगों का जाना हुआ, वहां से उन्हें प्राप्तियां भी हुई। लेकिन परम सत्य को जानना, पहचानना, उनसे संबंध जोड़ना सचमुच बहुत बड़ी बात है। मैं भी बचपन से ये सोचा करता था कि सत्य है क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ, कौन है वो परमात्मा, लेकिन उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं हुआ करता था। समाधान कार्यक्रम और पीस ऑफ माइंड चैनल निश्चित रूप से हम सबके लिए एक वरदान बन के आया हुआ है, जहाँ से हमें एक सत्य का प्रकाश मिल रहा है, जिसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचने की इच्छा, मैं कहूँगा कि बचपन से हमारे अंदर थी या सदियों से हमारे अंदर थी। आइए उस प्रकाश को प्राप्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत।
शुक्रिया।
भ्राता जी, एक जो तलाश रही है हमारे, मन शांत हो जाए, चित्त को बिल्कुल चैन मिल जाए, हमारी भटकन खत्म हो जाए, क्या ऐसा संभव है?
हाँ, संभव है, तभी तलाश है, संभव है तभी ये संकल्प है मनुष्य के पास। और विशेषकर भारतवर्ष में कुछ ज्यादा ही तलाश परमात्मा की रहती है
जी।
इसका एक असली कारण सभी को जान लेना चाहिए कि भारत में भगवान आते हैं और भगवान आकर मनुष्यों को सत्य ज्ञान देते हैं, ये सब बता देते हैं कहाँ से आए हो, क्यों हो यहाँ इस संसार में। जैसे आपके मन में प्रश्न उठते थे
जी,
मेरे मन में ऐसे तो नहीं उठते थे, पर परमात्मा को देखने की बहुत इच्छा थी और ये इच्छा भी करोड़ों लोगों के मन में है। तो ब्रह्मा कुमारीज में आकर करोड़ों लोगों के ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों आखिर आ गए, क्यों रह रहे हो यहाँ, इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं करोड़ों लोगों को। और जिसको भी चाहिए उसको मिलता है, बहुतों को इच्छा होती है भगवान से मिलने की, एक बार उसे देख तो लें कैसा है वो सचमुच, जो प्यार का सागर है, क्या प्यार है उसका। प्यार तो माँ बाप से बहुत मिल जाता है बच्चों को, लेकिन प्यार के सागर का प्यार कैसा होगा। और इसका कारण यही कि भारत में भगवान स्वयं आते हैं, ये उसकी जन्मभूमि है, और वो आकर न केवल ज्ञान देते हैं जिसकी मैंने चर्चा की, लेकिन सभी से नाता जोड़ते हैं वो पहले आकर, और फिर हमें सिखाते हैं कि तुम मेरे से नाता कैसे जोड़ो। और नातों में ही प्यार होता है, नातों में ही अपनापन होता है। तो उसके इस मिलन से आत्माओं को इतना सुख मिला, इतना अपनापन मिला, इतना पवित्र प्रेम मिला, इतना आनंद छा गया कि वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गया सदा के लिए। और जब द्वापर युग आता है तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है और हम सबको तलाश रहने लगती है कि हम कैसे फिर से वही गुड फीलिंग्स करें। तो वास्तव में ये है और ये फीलिंग होंगी, इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है, मिल रहा है। इसलिए परमात्मा पुनः इस धरा पर आकर वही सब गुड फीलिंग दे रहे हैं जिसकी जरूरत है।
करोड़ों की तलाश पूरी हो गई है, अब यदि मैं भी अब भटक रहा हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, तो मैं अब कहाँ पहुँचूँ और कैसे मिलूँ?
देखिए, ब्रह्मा कुमारी के जो केंद्र हैं वो यही सत्य ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, किसी बड़ी क्लास में हम थे तो बात चल रही थी कि स्वयं ज्ञान के सागर ने आकर हमें कितना श्रेष्ठ ज्ञान दिया और कितना सरल भाव से दिया कि हम उसकी श्रेष्ठता को कहीं कहीं मानते भी नहीं है कि वो इतना बड़ा ज्ञान होगा क्या। अगर किसी बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े आचार्य से भारत में ये पूछा जाए कि तुम आत्माएं संसार में कहां से आई हो, किसी को इसका उत्तर नहीं सूझता, वो गुस्सा कर लेंगे, कहां से आए हैं, ये कोई प्रश्न है क्या, उल्टे सुलटे प्रश्न क्यों पूछते हो। आगे छोटे बच्चे बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, बताओ बच्चों, फट से एक साथ सबने जवाब दिया, परम धाम से। सबसे गुह्य ज्ञान मुक्तिधाम से हम आते हैं, परम धाम से आते हैं, ये बच्चों को पता है यहाँ। और बड़े बड़े विद्वानों को और आचार्यों को पता नहीं है, वेदों शास्त्रों दर्शनों में इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने आकर सत्य ज्ञान दिया, वो इतना सुंदर दिया है कि सभी की हर तरह की प्यास मिट गई है। तो ब्रह्मा कुमारी केंद्र बने हुए हैं, जहाँ तहाँ हैं, 9000 हैं सारे संसार में, कहीं भी जाकर आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
रही बात भ्राता जी कनेक्शन की, एक बात आती है कि हम वहाँ जाएं, इन ज्ञान को समझें, सीखें, उसके बाद का जो स्टेप है बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि हम उनसे कैसे अपना संबंध जोड़ें, क्योंकि लगातार हम कहते आए हैं त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और आपने भी कहा कि सर्व संबंध वो निभाते हैं, तो ये कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ज्ञान एक ऐसी चीज होती है, बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है, देखिए वो 12वीं तक पहुंचेगा
जी,
एंट्रेंस देगा, किसी को 1 साल लग जाता है, कोई जल्दी कर लेता है, फिर 4 साल MBBS के, डॉक्टर बनने के लिए
इतनी
लंबी पढ़ाई है। तो आत्मा का ज्ञान, गुह्य ज्ञान, अदृश्य ज्ञान एक दिन में तो प्राप्त नहीं होगा, धीरे धीरे मिलेगा ना, इसलिए पढ़ाई को सतत चालू रखना चाहिए, फिर पता चलेगा कि उससे नाता कैसे जोड़े। मैं भी सोच रहा था, आप जब प्रश्न पूछ रहे थे कि वो निराकार है, निराकार से नाता जोड़ने में लोगों को सुख कैसे मिलेगा, उसके प्यार की फीलिंग कैसे होगी, उसे अपनापन कैसे भासेगा, कि निराकार निराकार, जैसे वैज्ञानिकों ने 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज कर ली थी ना, तो वो अति सूक्ष्म जो पॉइंट था सबसे गहरा एटम का, उसको गॉड पार्टिकल कह दिया गया, लेकिन गॉड तो अलग ही है। तो वो अपनी ये गुड फीलिंग्स, अपनेपन की फीलिंग, अपने उस श्रेष्ठ प्यार की फीलिंग साकार तन में आकर ही देते हैं। तो उन्होंने भी ब्रह्मा तन का आधार लिया, यानी वो अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, और उस तन में आकर हमें गुड फीलिंग दी। तो योग अभ्यास में भी एक है हमारी पावरफुल योग की स्टेज, जिसमें हमारे विकर्म विनाश होते हैं, दूसरा है परमात्मा प्यार की, उसे मिलन की, उसके सुखों की अनुभूति, वो हम सूक्ष्म लोक में तब करते हैं जब हम ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार शिव को बैठा देखते हैं और उनसे मिलन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, रू रिहान जिसको कहते हैं, चिटचैट करते हैं, तो इससे बहुत गुड फीलिंग्स होने लगती है।
परमात्मा को जिन निराकार रूप में हम कहते हैं, तब ये एक सर्वमान्य बात हो जाती है, सभी धर्मों के लिए मान्य बात हो जाती है, लेकिन जहाँ कहीं हम किसी साकार माध्यम की बात करते हैं तो वहाँ एक विरोधाभासी बातें या कई प्रकार के मत सामने आने लगते हैं कि हम इन्हें ही क्यों माने, और किसी का तन क्यों नहीं लिया गया, आदि आदि इत्यादि। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, इस प्रकार के जो वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं, तो शायद इससे भी क्या परमात्मा से लोग दूर नहीं हो जाते?
हाँ, जब विचार अलग हैं तो वैचारिक मतभेद भी होते ही हैं, और सभी धर्मों में अपनी अपनी मान्यता होती है, और धर्मों को मानने वाले अपनी मान्यता में कभी कभी बड़े दृढ़ और बड़े कट्टर भी होते हैं,
उनके अपने अपने
अपने विचार होते हैं, वो ठीक है, लेकिन जिसको भी परमात्मा से मिलन का अनुभव करना हो, उसे परमात्मा के सत्य स्वरूप को तो जानना ही होगा। इसलिए हमारे यहाँ क्रिश्चियंस लोग, बुद्धिस्ट लोग और बहुत सारे मुस्लिम्स लोग आते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में भी उसको आदम कहा है जिसके तन में परमात्मा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है आदम खुदा नहीं है, खुदा अलग है, ज्योति है, नूर है, आदम माध्यम है। ऐसे ही क्रिश्चियंस में उसको एडम कहा गया। ये कौन धर्म कहाँ ज्यादा अस्तित्व में आया, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की भाषा कैसी थी, उसके आधार से उनको अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन ये सत्य है कि निराकार सत्ता एक मनुष्य के तन में प्रवेश करके मनुष्यों को भाषणा देती है, क्योंकि भाषणा मनुष्यों को देनी है, प्योरिफिकेशन मनुष्यों का करना है, प्यार मनुष्यों को चाहिए, गाइडेंस मनुष्यों को चाहिए, तो वो भी मनुष्य तन में ही आता है। मान लो रैल के रूप में आ जाए तो मनुष्यों को गाइडेंस कैसे मिलेगी, इसलिए वो साकार रूप में अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करते हैं। उसकी पहचान जब निरंतर ज्ञान लिया जाएगा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, और इन सब प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा, इन्हीं के तन में वो क्यों आता है। देखिए, किसी को भी अपना माध्यम बनाने के लिए किसी एक को तो चुनना ही पड़ता है।
बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हों ये भी जो भी अपने गुरुओं को मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे गुरु परमात्मा के रूप हैं, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है। तो जब 100 लोग कह रहे हों तो ऐसे में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन ही जाती है और प्रश्न उठ ही जाता है।
गुरु लोग भगवान से नाता तुड़वाकर अपने से जुड़वाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ठीक है कि गुरु गाइड करे परमात्मा की ओर, वो मार्ग दिखाए मुक्ति का, वो मार्ग दिखाए परमात्मा से अपनी बुद्धि योग को कैसे जोड़ें, लेकिन ये सब छोड़ के मैं ही सब कुछ हूं तुम्हारे लिए, ये मान्यता सर्वदा गलत है। परमात्मा किसी मनुष्य तन में आके ये नहीं कहते ये सब कुछ है। परमात्मा जब मनुष्य तन में आते हैं वो मनुष्य तन का केवल आधार लेते हैं और बताते हैं साफ, मैं ये हूं, ये मनुष्य तन ये है, इसको नहीं, मुझसे तुम्हें योग लगाना है, गाइडेंस तुम्हें मुझसे मिलेगी, इससे नहीं, ये केवल मेरा मीडियम है, इसमें प्रवेश करके इसके मुख के द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अपना साधना, अपना अभ्यास, अपना पुरुषार्थ, अपना प्योरिफिकेशन इसको स्वयं भी करना है, इसलिए ये नहीं, ये तुम्हारा न गुरु है, न इसका तुम्हें ध्यान करना है, न इसको तुम्हें भोग लगाना है, वो सब परमात्मा का करना है। तो परमात्मा आकर जब ये ज्ञान देते हैं तो हम अपने सद्विवेक से ये पहचान सकते हैं कौन परमात्मा है और कौन गुरु है।
दादा जी, यदि 100 लोग खड़े हो जाएं और 100 के 100 ये कहने लगे कि हाँ मुझमें भगवान आते हैं या मैं परमात्मा हूँ, वहाँ यदि मेरी विवेक शक्ति उतनी ज्यादा प्रखर नहीं है, पहुँची हुई नहीं है, तो मैं कैसे फिर इन 100 लोगों में से पहचान पाऊँ? क्या कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे भाव हमारे सामने आए जिनके माध्यम से हम समझ सके कि नहीं यही परमात्मा?
बिल्कुल, ऐसा आजकल हो भी रहा है, कई बार ये भटकती हुई आत्माएं किसी के तन में भी आकर ये बोल देती हैं मैं ही शिव हूँ।
अच्छा, दूसरी बात ये भी कि वो कुछ न कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं कि भाई हाथ से कुछ निकाल दिया,
सिद्धियां भी होती हैं और ये आत्माएं आकर ऐसे चमत्कारी कार्य करती हैं, लेकिन परमात्मा के आगमन की कहाँ वो है, कुछ सिंपल प्रैक्टिकल बातें हमें जान लेनी चाहिए। न तो परमात्मा कोई चमत्कार दिखाते हैं, वो देते हैं सत्य ज्ञान, उनकी दृष्टि पाकर मिलता है बहुत प्यार और बहुत गहरा इफेक्ट, यानी उनकी नजर के लिए कहा गया है कि उनकी नजर से मनुष्य निहाल हो जाते हैं। मान लो 100 लोग हमारे सामने खड़े हैं और हमारे पास बहुत कम विवेक भी है, लेकिन जिस तन में परमात्मा होंगे उनका ग्लो, उनका तेज बहुत जबरदस्त होगा, उनके चेहरे से शांति फैल रही होगी, जब वो बोलेंगे तो उनके बोल से अपनापन झलकता होगा, वो प्यार का सागर है, उस प्यार की फीलिंग होगी, और वो जब ज्ञान देंगे तो आत्म कल्याण का ज्ञान होगा, विशेष रूप से वो सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान होगा, और उनका आदेश भी होगा बी प्योर। परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो वो भोग खाने के लिए नहीं, वो किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, वो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। ये लक्षण चेहरे से भी दिखाई देंगे, बोल से भी दिखाई देंगे, एक्सप्रेशन से भी दिखाई देंगे, दृष्टि से भी दिखाई देंगे। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक दिन में नहीं तो कई बार इस मिलन को करके उस चीज की सत्य को परख सकता है।
यहाँ ऐसा क्या आपने देखा, क्या मिला जो आपको लगा कि नहीं परमात्मा है तो यही?
मुझे 64 से ज्ञान मिल गया था, मैंने चर्चा अनेक बार की है, और मुझे योगी बनने की बहुत ज्यादा चाहत थी इस जीवन में, मुझे जैसे कुछ नहीं चाहिए केवल योगी बनना है। तो राजयोग की मुझे एक छोटी सी पुस्तिका मिली और उसके आधार से मैंने जब योग अभ्यास किया तो बस मुझे ऐसा लगा फॉर द फर्स्ट मोमेंट कि मेरा परमात्मा से मिलन हो गया, और दूसरी फीलिंग ये हो गई कि बस प्योरिटी इज द डिविनिटी, प्योर बनना है। इन दो फीलिंग्स के साथ मुझे, मतलब मैं कन्विंस हो गया कि यही सत्य है, ज्ञान लिया मैंने, और फिर 68 में मैं पहली बार यहाँ पर आया बाबा से मिलने
जी।
ग्राउंड आर्य समाज थी और आर्य समाज में परमात्मा के अवतरण को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब वो सब जगह है तो आएगा कहाँ से, क्यों आएगा, है ही पहले से ही उपस्थित है। तो इसी मान्यता को लेकर हम भी यहाँ आए और बाबा को जब पहली बार देखा, बाबा के कमरे के बाहर ही आंगन था छोटा सा, तो बाबा की पर्सनालिटी से हम बहुत आकर्षित हुए, लेकिन बाबा का तब चेहरा दूसरे ढंग का था। सवेरे जब क्लास में आए 6:15 बजे बाबा को देखा तो बाबा के चेहरे पर जो ग्लो था, तेज था, वो बहुत जबरदस्त था। बाबा ने जब हॉल में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि करंट फैल गया हो हॉल में, जागृति आ गई हो सब में, वो अलग चीज। फिर जब क्लास के बाद बाहर आए, फिर बाबा होते थे क्योंकि मिलने वाले बहुत थोड़े, मुश्किल से हम 50-60 होते थे, बाबा को आराम से देख सकते थे, फिर वही साधारण स्वरूप जो कल देखा था वो दिखाई दिया। तो 7 दिन हम तब यहाँ रहे और बुद्धि ने ये मान लिया कि परमात्मा इनके तन में आते हैं सवेरे सवेरे ज्ञान देने के लिए। तब उनकी दृष्टि का जो प्रभाव होता था, उनके जो बोल होते थे, बोल में जो अपनापन होता था, परमात्मा फीलिंग होती थी, उसने मन को कन्विंस कर दिया कि नहीं परमात्मा आते हैं। और तब उनके ही मुख के द्वारा सुन लिया, तुमने सबसे बड़ी गलती यही की कि मुझे सब जगह कह दिया, इसलिए तुम मेरे से नाता नहीं जोड़ सके। दूसरी सुंदर बात मुझे मिली थी तभी प्रथम मुलाकात में कि जब मैं सब जगह हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अरे समाज से हम जानते थे अंदर भी है बाहर भी है, तो फिर तुम मुक्त क्यों होना चाहते हो, मुक्ति में कहाँ जाओगे, मुक्तिधाम कहाँ है। तो इन बातों ने मन को कन्विंस कर दिया और बाबा के मिलन से, बाबा के एक्सप्रेशन से बिल्कुल गुड फीलिंग हो गई कि यही सत्य है, इनके तन में परमात्मा आते हैं। और जब फिर बाबा से अलग मिले, हम सब एक एक मिलते थे बाबा से
जी।
तो बाबा ने जब दृष्टि दी तो मैं बिल्कुल बॉडी लेस हो गया और ये वही स्थिति थी जिसकी चर्चा योग दर्शन में हमने पढ़ी थी छोटी आयु में ही, कि मनुष्य योग की अंतिम स्थिति में कैसे निर्संकल्प समाधि में पहुंच जाता है, वो विदेही स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो चलते फिरते भी योग युक्त हो सकता है। तो वो स्थिति मेरी बन गई लंबे काल के लिए और मैं, मुझे ऐसा लगा देह जैसे मुझे है ही नहीं, डिवाइन फीलिंग। तो यहाँ से मैं कन्विंस हुआ और तभी मैंने निर्णय लिया था कि कितना अच्छा हो मेरा जीवन इन्हीं के साथ बीते।
ब्रह्मा बाबा की गहन साधना के आधार पे ऐसी अनुभूति आपको प्राप्त हुई हो, ये भी एक प्रश्न कोई कर सकता है। क्या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस निराकार परमात्मा को ब्रह्मा बाबा के तन में आते हुए देखा, अनुभव किया, साक्षात्कार किया, जिसके आधार पे भी ये बात कही जा सके कि ये ब्रह्मा बाबा का ज्ञान नहीं परमात्मा का ज्ञान?
ये प्रश्न लोगों के मन में उठता था क्योंकि बुद्धिमान लोग भी तो बहुत आते थे ना बाबा की सभाओं में, कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्मा बाबा की अपनी साधनाओं के कारण उनका ये प्रभाव है। और ये होता ही है, मनुष्य की जब बहुत अच्छी साधनाएं होती हैं तो उसकी दृष्टि में पावर, उसके बोल में पावर, उसके व्यवहार में बहुत प्यार हो ही जाता है। और ये ब्रह्मा बाबा में था नो डाउट, उनके पास भी बहुत शक्तियां थी, लेकिन जब उनके तन में परमात्मा आते थे तब का उनका स्वरूप और अलग उनका स्वरूप, दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी दिखाई देता था। यद्यपि वो भी महान तपस्वी थे, सत्यागी थे, संपूर्ण समर्पण थे, अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, बहुत बड़े त्यागी थे। तो कई लोग ये प्रश्न करते थे और हमारे ही ग्रुप में जब हम आए थे 3-4 लोगों ने तो शिव बाबा को ऊपर से उनके तन में अवतरित होते देखा और वो क्लास में ही बिल्कुल भावुक हो गए थे, वो आ गए आ गए आ गया। फिर उनको चुप किया जाता था, शांत बैठो, तो निराकार महाज्योति ऊपर से आ रही और उनके तन में आ गई। ये कईयों को न केवल अनुभव होते थे लेकिन दिखाई देते थे
स्थूल आंखों से, या उन्हें वो साक्षात्कार की स्थिति होती थी। और
देखिए कहने में तो यही आएगा, आंखों से दिखे लेकिन तब आंखें उनकी नहीं देखती, उन्हें डिवाइन इनसाइट प्राप्त होती है और उसके द्वारा वो दिखाई देता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्रत जी, विशेष करके जब परमात्मा का आगमन इस प्रकार से होता था तो क्या हम सहज योग युक्त तो हो जाया करते थे, मतलब जब आप लोग वहां बैठा करते थे तो, या फिर उस समय भी योग के लिए कुछ अभ्यास या मेहनत या परिश्रम की बात हुआ?
नहीं, सत्य यही है कि जिनको राजयोग की विधि आती थी वो उस टाइम बहुत सहज और संपूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करते हुए योग युक्त हो जाया करते थे। बाबा जब सामने आते थे तो बाबा पहले दृष्टि देते थे 5 मिनट पूरी सभा को, पर बाबा की दृष्टि से ही ये प्रभाव था। यहाँ बाबा मैं कह रहा हूँ, शिव बाबा को, निराकार को, उनकी दृष्टि में ये प्रभाव था। कम से कम मुझे तो अपना अनुभव अब तक याद है 46 ईयर्स पहले का, कि मेरा चित्त तो ऐसा एकाग्र हो गया था कि मुझे एक निराकार के सिवाय लंबा काल कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ऐसे ही अनुभव कईयों को होते थे, ये मैं नहीं कहूंगा सबको होते थे, क्योंकि सबकी साधनाएं अपनी अपनी है। कि किसी का मन बहुत भटकता है तो उसको क्षणिक होता था, पर होता सबको था, पर मुझे और मेरे एक दो साथी जो थे युवक कुमार, उनको लंबा काल तक ऐसा हो गया था कि बुद्धि परमात्म स्वरूप पर लंबे काल के लिए स्थिर हो गई।
जी जी लता जी, क्या अब भी जो नए लोग आ रहे हैं, विद्यालय से जुड़ रहे हैं, जैसे आपने एक ऐसा गहन समाधिस्थ सा अनुभव किया क्योंकि ब्रह्मा बाबा उस समय थे, अब जब यहाँ आते हैं तो क्या परमात्मा का उसी प्रकार से मिलन होता है या स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया और क्या अनुभूतियाँ भी वैसी होती हैं?
स्वरूप तो पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तब शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर लेते थे और अब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो गुलजार दादी को पहले ध्यान में जाना होता है, ध्यान स्थित होना होता है, फिर परमात्मा उसके तन में प्रवेश करते हैं। और अब हमारी सभाओं में 20-25-30 हजार लोग होते हैं, तो यद्यपि परमात्मा के लिए इसका कोई महत्व नहीं कि सामने कितने बैठे हैं, पर हम ये देखते हैं, सब देखते हैं, 25-30 हजार लोग देखते हैं कि सभा में प्यार का माहौल छा गया है। इतनी बड़ी सभा होते भी पिन ड्रॉप साइलेंस वहां रहती है, और मैं ऐसा कहूंगा कम से कम 10% लोगों को, अगर 25 हजार सभा में बैठे हैं तो 2500 को वही अनुभूति होती है कि मन पूरी तरह स्थिर शांत, भिन्न भिन्न तरह की गुड फीलिंग होती है जो हमें आके बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं। उसमें से 50% को ऐसा समझ लें बहुत गुड फीलिंग्स होती हैं, उस समय के लिए उनको कई अच्छे अनुभव होते हैं, कई वहां भी शिव बाबा को उनके तन में उतरता हुआ देख लेते हैं, और बाकी जो 40% बचे उनको मीडियम फीलिंग होती है क्योंकि वो किस तरह की धारणाएं करके आए हैं, उन्होंने पिछला एक साल कैसे बिताया है, ज्ञान कितना लिया है, एकाग्रता का अभ्यास, साधनाओं का अभ्यास कितना किया, उस अनुसार उनकी सो एंड सो फीलिंग्स रहती है। तो 10% लोग तो अब भी हमारी सभाओं में ऐसे होते ही हैं। मैंने कहा 20 हजार हैं तो 2000 लोग ऐसे होंगे जो ग्रेट काइंड ऑफ फीलिंग्स परमात्म मिलन की करते हैं।
चलिए बहुत अच्छा लग रहा है दाता जी उस परम सत्ता के बारे में बात करके। मैं कल के एपिसोड में जरूर ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी ये उत्सुकता हो रही होगी, जैसी समाधिस्थ अवस्था या जैसी परमात्म मिलन की सुंदर सुखद अनुभूति आपने प्राप्त की है और अनेक लोग अब भी प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शक भी वो प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी मैं जरूर कल आपसे लूंगा, इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया दाता जी। मित्रों, सचमुच जब परमात्मा की चर्चा होती है तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक महसूस करता हूँ, बहुत ही दिल से उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप सब भी ऐसा ही महसूस करते होंगे, क्योंकि मनुष्यों से नाते तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन एक उनसे हमारा ऐसा नाता है जो बहुत ही नजदीक का नाता है, जो बचपन से है, जो पल पल है, और कभी हम दुखी हो जाते हैं तो सिवाय उनके हमें और कुछ सूझता भी नहीं है, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो कितना अच्छा हो कि हम उन्हें बहुत गहराई से समझें, अपने जीवन में शामिल करें या उनके अंग संग हो लें, तो मुझे लगता है कि जीवन का आनंद जो है वो 100 गुना 1000 गुना या इससे बहुत गुना बढ़ जाएगा और हम सचमुच जीवन को संपूर्ण रूप से जी पाएंगे। कैसे उनसे मिल पाएंगे और कैसे सर्व संबंधों की अनुभूति कर पाएंगे, कल इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, अपनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान।